हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंध 9 अध्याय 1 श्लोक संख्या 8। परावरेषां भूतानां आत्मया पुरुषः परः स एवासीदिदं विश्वं कल्पान्ते नित्य किंचन परावरेषां भूतानां आत्मया पुरुषः परः स एवासीदिदं विश्वं कल्पान्ते नित्य किंचन परावरेषां भूतानां आत्मया पुरुषः परः स एवासीदिदं विश्वं कल्पान्ते अन्यत्र किंचन। धन्यवाद। हरे कृष्ण शब्दार्थ। परावरेषां जीवन के उच्च या निम्न स्तर के सारे जीवों का, भूतानां भौतिक शरीर धारण करने वालों का, आत्मा परमात्मा या जो है पुरुषः परम पुरुष परः दिव्य स वह एव निसंदेह आसीत था इदं यह विश्वं ब्रह्मांड कल्प अन्ते कल्प के अंत में अन्यतः अन्य कुछ भी न नहीं किंचन कुछ भी। अनुवाद में तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की जीवन की उच्च तथा निम्न अवस्थाओं में पाए जाने वाले जीवों के परमात्मा दिव्य परम पुरुष कल्प के अंत में विद्यमान थे। जब ना तो यह ब्रह्मांड था न अन्य कुछ था तब केवल वे ही विद्यमान थे। तात्पर्य मनु के वंश के वर्णन का कहां से प्रारंभ किया जाए। इस दृष्टि से सुखदेव गोस्वामी यह कहते हुए प्रारंभ करते हैं कि जब समस्त जगत जल मग्न हो जाता है तब केवल भगवान विद्यमान रहते हैं, उनके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रहता। अब सुखदेव गोस्वामी यह बतलाएंगे कि भगवान एक एक करके अन्य वस्तुओं को किस तरह उत्पन्न करते हैं। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है श्रीमद् भागवतम कथा में। नवम स्कंद शुरू हुआ है और इस स्कंद का नाम है, इस अध्याय का नाम है राजा सद्युम्न का स्त्री बनना। बड़ा अच्छा अध्याय है, इसमें पता चलेगा ऋषि मुनियों की आगे चलकर क्या शक्ति हुआ करती थी, किस प्रकार एक यज्ञ हुआ था और उस यज्ञ में ब्राह्मण लोग राजा के लिए ये ध्यान कर रहे थे कि इनका पुत्र हो। तो ऋषि मुनि इतने शुद्ध उतने पवित्र हुआ करते थे कि जिस प्रयोजन से यज्ञ इत्यादि करते थे या मंत्रों का उच्चारण करते थे काम वही होता था, पुत्र ही होगा, मतलब उनको पुत्र की ही आकांक्षा थी। पति कई बार होता ना माताओं को मुझे लड़की चाहिए, तो आखिरी में डिस्कस किया तो यज्ञ शुरू किया तो उनको ध्यान में लड़की का चिंतन आ गया कि माता जी ने लड़की बोला है तो लड़की उत्पन्न होगी, है ना। अब उनको वो इतने सेटिस्फाइड नहीं थे उनके हस्बैंड, उनको भाई ये तो क्या हो गया। बाद में फिर उसको लड़का कर दिया गया। अगर ऐसा आज हो जाए सिस्टम तो सारे लोग ऐसे ऋषि मुनियों के पीछे पड़ जाएं, ये हमारी लड़की चेंज कर दो लड़का दे दो, ना लड़का चेंज कर दो लड़की दे दो, है ना। किसी के घर में लड़के लड़के तो कहते लड़की हो जाए, किसी के लड़कियाँ लड़कियाँ तो कहते हैं लड़का हो जाए, आधे झगड़े समाप्त हो जाएंगे ना घरों के। विवाह के बाद सास वगैरह सबको ये रहता है कि भाई लड़का चाहिए लड़का चाहिए, है ना। शुरू से समाज इस प्रकार से रहा है। प्रजापति तो कितने सारे लड़के करे, सारे फुल टाइम हो गए थे, नारद जी ने जब उनको प्रचार किया, है ना, 10,000 बच्चों को प्रचार किया और सब के सब ब्रह्मचार्य का पालन करने लगे। उन्होंने प्रजापति हैं भाई, उन्होंने संख्या बढ़ानी है संसार में, खाली पड़ा है पूरा संसार, प्लॉट काटने हैं, सब कुछ देना था उनको, अभी सब कुछ खाली पड़ा था। तो जब वो सारे के सारे बोले जी हम तो ब्रह्मचार्य को तो चाहिए नहीं, सब प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तो उन्होंने फिर 1,000 बच्चे और पैदा किए। वो 1,000 भी नारद जी से मिल गए, तो उन्होंने बोला मैं कुछ नहीं बोलूँगा भाई, तुम्हारे बड़े भाइयों को देख कर सीख लो जो सीखने हैं। तो बड़े तो भाई ब्रह्मचारी बन चुके थे, उन्होंने भी 1,000 ने भी चेंज कर लिया, वो भी ब्रह्मचारी बन गए। तो फिर प्रजापति को लगा ये क्या हो रहा है, जितने भी लड़के पैदा कर रहा हूँ सारे जो हैं ज्वाइन कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, लड़कियाँ प्रकट कर दी, अब मैं लड़कियाँ करूँगा। तो फिर नारद जी दूर हो गए, कहते भाई ये मेरा बिजनेस नहीं है, तो थोड़ा सा दूर हो गए। उसके बाद फिर वो तो स्त्रियाँ फिर प्रकट करी, क्योंकि संसार को चलाने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों की आवश्यकता है। कई बार ऐसे आंकड़े पड़े जाते हैं कि हर 1,000 पुरुष के पीछे हमारे देश का क्या रेट चल रहा है मालूम आपको, स्त्रियाँ कितनी, अराउंड जो एवरेज आता है 925 या 33 ऐसा कुछ रेशियो, पहली लड़कियाँ कम हैं। उसके बावजूद जो हैं लोग ज़्यादातर ये पुरुष प्रधान समाज जो हैं लड़कियों के ऊपर इतना अत्याचार करता रहता है नेसेसरी। और हरियाणा साइड में तो ये भी देखा जाता है कि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा दबंग लोग रहते हैं, तो वो पसंद ही नहीं करते। तो वहाँ पर भी बताते हैं कि इतनी संख्या बढ़ गई लड़कों के, लड़के लड़के घूम रहे, लड़के देखने को नहीं मिल रही। तो ये भी एक बड़ा संकट है समाज में, पॉपुलेशन कैसे बढ़े। तो फिर भगवान जो हैं इस प्रकार की प्रेरणा देकर संसार आगे चलाते हैं कि सिस्टम से चले समाज। तो ये तो धीरे धीरे समाज जब अपनी संस्कृति को भूल जाता है, शास्त्रों और ग्रंथों की शरण से हटकर अहम ममेति के भाव में आ जाता है, भोग की मेंटालिटी के साथ जीता है, तब समाज का कल्चर बिगड़ना शुरू हो जाता है। तब जो है वो संस्कार या वो पद्धतियां खत्म हो जाती हैं जिसका कि पालन किया जाना चाहिए था। यहाँ पर इस अध्याय में हम देखेंगे कि ये जो घटना घटी हमने जो आगे बताई होने वाली है, तो उस प्रकार की आजकल तो नहीं होती हम जता है ना, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत कई लोग बड़ा धन्य मानेंगे अपने को, कई लोग करेंगे। लेकिन इससे पहले ही क्योंकि कलयुग आ चुका, तो कलयुग के आते ही कलमश और अपवित्रता बढ़ गई, और जब अपवित्रता बढ़ गई, ब्राह्मण शुद्ध नहीं रहे, मंत्रोच्चारण शुद्ध नहीं रहा, सामग्री शुद्ध नहीं रही, तो फिर वो सब जो है सिस्टम बिगड़ गया। अब वो मंत्रोच्चारण में शक्ति नहीं रही, तो रिजल्ट भी वैसे आने बंद हो गए। इसलिए वो त्रेता युग में हुआ करते थे यज्ञ, है ना, और द्वापर युग में फिर अर्चन इत्यादि शुरू हुआ। लेकिन कलयुग में बताया गया ऐसी विधि निजात की गई कलयुग के लोगों के लिए जिनकी उम्र भी कम थी। कितनी उम्र है कलयुग के लोगों की, 100 वर्ष की उम्र दी गई है, है ना, और वो भी पूरी पूरी नहीं है, उसमें भी जो है डिस्काउंट मिल जाता सबको। किसी को 10 साल का डिस्काउंट है, किसी को 20 साल का डिस्काउंट है, किसी को 30 साल का डिस्काउंट है ना। कल हम बात कर रहे थे, कई लोग चाहते थे कि हम अमृतत्व को प्राप्त कर लें, मतलब अमर हो जाए, है ना। तो अमर होना कितना खतरनाक बेनेडिक्शन है ये, कहीं कोई मांग न ले, क्योंकि अगर किसी ने मांग लिया कि हम अमर हो जाएं, तो मतलब आपकी मृत्यु नहीं होगी। मतलब ये कि जो आपकी कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, जो पड़ोसी की प्रॉब्लम है, और जो शरीर में जर्जर होना है, जो वृद्धावस्था आनी है, दांत टूटने, बाल खत्म होने, आंखें क्षीण होनी है, मतलब ये सब होगा, लेकिन हम मरेंगे नहीं। कोई ऐसी अवस्था में रह सकता है, वैसे ही मर जाएगा वो, क्योंकि लोगों को अपने को सुंदर देखने की आदत है, शीशे के आगे से हटते नहीं लोग। तो जब ये देखेंगे कि अमृतत्व का वरदान प्राप्त हो गया, तो ऐसी जर्जर अवस्था में जीना कितना दुखद है उसके लिए। फिर वो क्या प्रार्थना करता है, जब कुछ कष्ट हमारे ऊपर ही आ जाए, तो हम क्या बोलते हैं भगवान को, हैं कि भगवान हमें उठा लो, है ना। थोड़े से कष्ट आ जाए तो हम लोग ये बोलते हैं। भीष्म पितामह जी को भी एक वरदान प्राप्त था, कौन सा, इच्छा मृत्यु। जब इच्छा होती तब मरते। अब उस युद्ध में अपने परिवार के पौत्र और पोत्रियों को देख रहे हैं लड़ते मरते, अपने घर के अपने खून जो है क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में जमीन के लिए। तो ये तो अपने आप में कितना बुरा है कि पितामह के सामने बच्चों की मृत्यु हो रही है, और उसके बाद तो व्यक्ति कहता है इससे अच्छा तो मैं, अगर ये आजकल के लोगों को वरदान मिल जाए, इच्छा मृत्यु वाला, तो क्या होगा मालूम? ये संसार खाली हो जाएगा। खाली क्यों हो जाएगा? कि लोगों का मन इतना चंचल है कि मांग कर देखता हूं ठीक है कि नहीं। तो उसी में ठा हो जाएगा व्यक्ति। और अगर मान लीजिए दूसरे को देखा मर रहे तो वो नहीं मांगेगा, मैं नहीं मांगूंगा, है ना। इच्छा मृत्यु, इच्छा मतलब इच्छा पे आना चाहिए ना। और व्यक्ति का मन इतना चंचल है, कंट्रोल ही नहीं है माइंड पे, इच्छा अपने आप ही आ जाएगी। जैसे हम आपको बोल रहे हैं, आप रसगुल्ले का ध्यान मत करो कि कैसा है देखने में, कितने के दिन में आ चुका है, कैसा होता है। और सोचिए अगर इच्छा मृत्यु का हमें वरदान मिल जाए तो ये पूरा प्लैनेट खाली हो जाए, है ना। या फिर कई बार अगर मान लीजिए कुछ मन को कंट्रोल भी कर ले, कुछ देर लंबा समय जी ले, या इच्छा ना करे कि मैं मरने की इच्छा ना करूंगा, तो ऐसी समस्याएं आती हैं संसार में। श्री श्री राधे राधिका रमन भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम। इतने दुख आते हैं, इतने कष्ट आते हैं, संतान इतनी बिगड़ी हुई निकलती है, या व्यक्ति का शरीर इतना उसको दुख देता है, तो क्या बोलता है, इससे तो क्या होता, मैं मर ही जाता। और आजकल क्या होता, हम कितनी बार बोल रहे हैं भगवान के सामने कि मैं मर ही जाता तो अच्छा था, लेकिन मरता व्यक्ति नहीं मरता, क्योंकि उसकी जितनी लिखी है उतने दुख तो भोगने हैं उसको। तो इसलिए भगवान ने ये सारे सिस्टम नहीं दिए इस युग में, सारे के सारे अपवित्र लोग हैं। इसलिए जो है इस प्रकार के वरदान नहीं दिए गए। तो कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में हरिनाम दिया गया हम लोगों के लिए कि भाई आप हरिनाम जप लें, खाली जीव हिला लें, वैसे लोग हिलाते हैं, वो सुबह से शाम तक हिलाते रहते हैं, तो इस अच्छे काम के लिए हिला लें जिससे हमारा उद्धार हो जाए। तो यहां पर परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, श्री राजोवाच अध्याय का पहला श्लोक है, उसमें पूछ रहे हैं राजा परीक्षित ने कहा है, प्रभु सुखदेव गोस्वामी जी, आप विभिन्न मनुओं के सारे कालों का विस्तार से वर्णन कर चुके हैं, इससे पहले भी कई प्रश्न पूछे गए छठे सातवें अध्याय में। परीक्षित महाराज ने बोला कि मुझे जो है बताइए थोड़ा सा कि किस किस मनवंतर में क्या क्या हुआ, क्योंकि हम लोगों को कई बार लगता होगा श्रीमद् भागवतम पढ़कर ये कथाएं सुनकर ये अचानक ये कौन सी कथा आ गई बीच में, जैसे श्रीमद् भागवतम ही है, ये वास्तव में चर्चा चल रही है शौनक आदि ऋषि और सूत गोस्वामी जी के बीच। सूत गोस्वामी जी श्रीमद् भागवतम कथा सुनकर आए थे, कहाँ पर, जब सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी, तो वहां पर सूत गोस्वामी जी भी बैठे थे। और फिर जब आगे चले तो नैमिषारण्य में सारे के सारे शौनक आदि ऋषि, शौनक ऋषि थे और उनके साथ बहुत सारे ऋषि, 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। किस लिए हुए? कि भाई कलयुग आ गया है और कलयुग के लोगों की उम्र कम होगी, बुद्धि कम होगी, मंद बुद्धि के होंगे, भाग्य कम होगा, हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, जल्दी जल्दी मरने वाले होंगे, तो कलयुग में हमेशा अपवित्रता बरकरार रहेगी, कलयुग के कलमश रहेंगे, तो इन लोगों को उद्धार कैसे होगा? कौन सोचने के लिए बैठे थे ये सब? शौनक आदि ऋषि। किसके लिए सोच रहे हैं? कलयुग के लिए। कौन है वो? हम लोगों के लिए बैठे थे वो लोग, और ऐसा विचार कर रहे थे कि क्या उपाय निकाला जाए। और उस समय वहां पहुंच गए सूत गोस्वामी जी, और फिर सूत गोस्वामी जी को उन्होंने प्रार्थना करी कि आप बताएं कैसे होगा इनका उद्धार, आप करें कथा कृष्ण की। उन्होंने बताया कि सबसे अच्छा क्या है, मैं आपको बताता हूं, जो भी सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुना है, और फिर उनकी कथा करना शुरू करी। ये पूछा कि परीक्षित महाराज ने क्या क्या पूछा, ये बताना शुरू किया। और उसके बाद मैत्रेय मुनि और विदुर जी का प्रसंग बीच में आ जाता है। सुखदेव गोस्वामी कोट करते हैं मैत्रेय मुनि और उनके बारे में कि उन्होंने क्या क्या किया, वो कोट करते हैं। जब उनका वार्तालाप चलता है सुखदेव उनका मैत्रेय मुनि और विदुर जी का, तो फिर आगे जाके युधिष्ठिर नारद मुनि जी की चर्चा चलना शुरू हो जाती है कि मैं बताता हूं, तो कहानी के बीच में कहानी, कहानी के बीच में कहानी चल रही है। और इस प्रकार अचानक कई बार सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज प्रश्न करने लगते हैं, और कई बार शौनक आदि ऋषि कहते हैं हमें ये समझ नहीं आया, इसके बारे में और बताइए सूत गोस्वामी जी से। तो यहां पर क्या किया, पूछा कि कितने मनवंतर हैं, इन मनवंतरों में किस किस का कैसे कैसे अवतार हुआ वो भी बताइए। उद्देश्य क्या था इसके पीछे, ताकि कथा चलती रहे, अनवरत कथा चलती रहे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी ने बता दिया कि अंतिम किसी के पास समय कम रह गया हो तो उसे हमेशा क्या करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, और किसी के पास बहुत ज्यादा हो उसे क्या करना चाहिए, उसे भी यही सुनना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो हर एक व्यक्ति के 7 दिनों में ही होनी है। जितना समय परीक्षित महाराज के पास था, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, उसी तरह हमारे पास भी उतना ही दिन है, हमारी भी इसी में हो गया, आठवां दिन तैयार नहीं हुआ हमारे लिए, तो सात दिन हमारे पास भी। तो कथा शुरू हुई और मनवंतरों का कहना शुरू करेंगे, बताते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन जो है, अगर हम लोग इस हिसाब से तैयारी समझने का प्रयास करें कि एक जो चतुर्युग होता है उसमें, जैसे अभी हम जिस चतुर्युग में हैं उसके हम लोग कलयुग के युग में रह रहे हैं, और कलयुग की जो उम्र बताई गई है वो बताइए 432,000 वर्ष। आए दिन कुछ ना कुछ साइंटिस्ट और कोई ना कोई ऐसा प्रेडिक्शन आता है कि अब यह है 2016 में खत्म होने वाला सारा संसार, है कि नहीं? आए दिन प्रेडिक्शन आती रहती है इस तरह की, नहीं नहीं 16 निकल गया आराम से, तो अब 18 में होने वाला है जी, पक्का बता रहे हैं 18 में होने वाला है। नास्त्रदेव ने भी बोला था कि हो जाएगा ऐसा कुछ, उसने नहीं बोला, बट कहीं ना कहीं से ऐसे प्रेडिक्शन आती रहती है, अब खत्म होने वाला, अब खत्म होने वाला। कुछ लोग जो बचपन से इस वैज्ञानिकों पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, सीइंग इज बिलीविंग, जो देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं, उन्हीं को अपना गुरु मानते हैं, उनसे दीक्षा लिए जिन्होंने, तो वो उनकी बातों पर, उनके विचारों पर, उनकी पुस्तकों पर बहुत विश्वास करते हैं कि इन्होंने ये देखो ये बनाकर दिखा दिया, ये कर दिखा दिया, और यही साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि 2021 में खत्म होने वाला सब कुछ, तो हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। यही साइंटिस्ट कहते हैं कि हम लोग चांद पर गए तो हमें विश्वास करना चाहिए, चांद पर गए फोटो देखी हमने, तो कुछ लोग ऐसा विश्वास करते हैं। यही साइंटिस्ट बोलते हैं कि बंदरों से मनुष्य आए तो हमें विश्वास करना चाहिए, है कि नहीं? और यही साइंटिस्ट बोलते हैं कि एक बार धमाका हुआ था और उससे सारी क्रिएशन हुई, तो जो साइंटिस्ट बोलता है तो उसको क्या पता है क्या उस समय वो अवेलेबल था जब धमाका हुआ क्रिएशन का? तो क्या लगा रहा है वो? अनुमान लगा रहा है। लेकिन साइंटिस्ट तो बोलते हैं कि भैया पहले दिखाओ फिर बात करेंगे, पहले तो प्रूफ कर दिखाओ। अब तुक्के में प्रूफ कर रहे हैं, अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं, लग गया ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 8-10 लोगों ने इकट्ठा मान लिया, चलो जी मान लेते कि धमाका हुआ था और तब सब कुछ फ्लोट करने लगा और ग्रेविटेशनल फोर्स बता दिया, जो शंकरशन जी नीचे हैं उनकी शक्ति से जो ब्रह्मांड ऊपर घूम रहे हैं उनकी शक्ति को भी एक नाम दे दिया, गुरुत्वाकर्षण बल। और फिर डार्विन को भी लगा मैं भी कुछ बोल दूं, है ना, सब कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, तो उसको लगा कि मेरे जैसा लगता है ये बंदर, मेरे शरीर में बाल हैं, इसके शरीर में बाल हैं, इसके भी 5 उंगली, इसकी 4, मेरी 5, बड़ा आपस में रिसेंबल कर रहे हैं हम लोग। तो उसने कहा जी मैं भी कुछ बना लेता हूँ, उसका जबड़ा उठाया, उसका उठाया, कहता जी देखो मिल रहा है ना जी, हम बंदरों से आए, तो ये उसने बंदर से बता दी और लोग विश्वास करें, अनुमान लगाया जा रहा खाली, अनुमान कि शायद ऐसा रहा होगा। अरे भाई ऐसा रहा होगा, वैसे तो तुम साइंटिस्ट हो, हर चीज को प्रूव करते हो, इस बात को क्यों नहीं प्रूव करते? अभी क्यों नहीं बंदर से बनाते आदमी? अभी बंदर के हाथ में किताब पकड़ा दो, चश्मा लगा देते हो, कहते बोल कुछ, सर्कस में दिखाते हो उसको, अरे अभी बनाओ ना। तो इस प्रकार के जो हैं ये पोस्ट डिटिक चेस देखते हैं या फिर हम लोगों को अनुमान उसमें लेके जाते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है? शास्त्रों का प्रूफ है, शब्द प्रमाण, क्योंकि डायरेक्ट परसेप्शन भी हमारे गलत होते हैं, है कि नहीं? अब सूरज एक प्लेट की तरह दिखता है, चंद्रमा एक प्लेट की दिखता है, वो थाली थोड़ी है, वो इतना बड़ा है, इस प्लैनेट से भी कितना बड़ा है वो, है ना, और सारे के सारे ब्रह्मांड घूम रहे हमें दिखाई भी नहीं दे रहे, तो कितनी सारी ऐसी चीजें जो हमको दिखती कुछ है होती कुछ है। अनुमान तो फिर अनुमान ही होता है, अनुमान की तो ज्यादा हमारे पास वो भी नहीं है, लेकिन शब्द प्रमाण की ज्यादा ऑथराइजेशन होती है, और वो शब्द जो अपरोक्ष अर्थात भगवान के द्वारा दिए गए शब्द है, इसमें जो लिखा है वो पूरी तरह से वैसा वैसा हो रहा है। मुझे भी कुछ दिन पहले एक फोन आया, हमारे एक अच्छे भक्त है, तो उनसे कई लोग प्रश्न करते, तो उनकी भी जिज्ञासा थी कि प्रभु जी मतलब ये किताबें तो किसने लिखी है ना, मतलब इस पर इतना विश्वास क्यों करें, मतलब कौन कहता है मनवंतर हुआ ये हुआ, मतलब ये भी तो किसने लिखा है? आप कह रहे हैं डार्विन नहीं मानेंगे, आप कह रहे हैं बिग बैंग नहीं मानेंगे, तो मतलब ये भी तो किसने लिखा है ना, तो इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, मतलब उसको कैसे समझाएं? वो तो भक्त था इसलिए पूछ रहा था। तो हमने यही बताया कि आज तक जितनी प्रेडिक्शंस हुई पूरी हुई हैं, ये तो सबसे बड़ी बात ही है कि भाई हमारे शास्त्रों में पुराणों में भगवान बुद्ध का अवतार की बात हो गई, उससे पहले जितने अवतार हुए उसके बारे में बात हो गई, जब उसको लिखा विक्रमादित्य की प्रेडिक्शन थी 5,000 साल पहले वो लिख दी गई, राजा अशोक के बारे में बता दिया गया, भविष्य पुराण में क्राइस्ट के बारे में बताया गया, मोहम्मद के बारे में बताया गया। तो उन्होंने कहा प्रभु जी हो सकता है कि ये तो शायद अभी लिखा हो, मतलब ये होने के बाद ही तो हुआ है ना। अब विक्रमादित्य के समय पे तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, ठीक है, नहीं थी ना, तो शायद उसके बाद लिखा हो, उसके बाद छपा हो, और ये होने के बाद उन्होंने सब कुछ कनेक्ट कर दिया हो। प्रश्न तो बड़ा लाजमी है। तुमने बताया पहली बात तो, आज तक तुम एक ऐसा राइटर ढूंढ के देख लो, पहली बात, अगर कोई वैसे लिखना भी चाहे तो जो इतनी सुंदर ढंग से इतनी सुंदर कनेक्टिविटी डाल दे हर एक चीज की, और जो भी पुराण उठाओ उसमें सही कथा मिल रही है और कहीं ना कहीं आपस में लिंक मिल रहा है, उसके पिछले जन्म में कौन क्या था ये सब पता चल रहा है, और जितनी प्रेडिक्शंस हुई थी सारी पूरी हुई। कहते हैं मैं मानता हूं, मैं तो मानता हूं, बट कई बार लोग ऐसा बोलते हैं। फिर दूसरा हमने उसको बोला कि कहते आगे की कुछ भविष्यवाणी है कि जो पूरी हो रही हो। हमने कहा 12वां स्कंद पढ़िए, उसमें कलयुग में क्या क्या होने वाला है उसकी सारी भविष्यवाणी है, लोग कैसे होंगे, क्या करेंगे। कहते कुछ हो सकता है, ये भी लिख दिया लोगों ने, क्यों आजकल तो सिम्टम दिख ही रहे हैं कि लोग जो है छोटी उम्र के होंगे, 20-30 साल जिएंगे, है ना, लोग जो है काम सुख के चक्कर में ही घर में रहेंगे, नहीं तो डाइवोर्स ले लेंगे, है ना, ये हो ही रहा है। फिर मुझे शायद लिख दिया किसी ने, फिर लगा मुझे, मैं अच्छा बात तो ठीक कर रहा है, फिर कैसे कन्विंस करें ऐसे व्यक्ति को। मैंने कहा आप सरकारी दफ्तर में ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, आप इतने बड़े पोस्ट पर हो, सरकारी डिपार्टमेंट में हो, मैंने कहा चलिए आप ऐसे काम करते हैं, क्योंकि आप तो इतने बड़े ओहदे पर हो, आपके एक फोन से एक चीज से काफी कुछ होने वाला है। मैंने कहा चलिए आप थोड़ा सा इतिहास निकाल लीजिए, जितने ये लोग पुरातत्व विभाग वाले लोग हैं इनसे ये पूछिए कि ये पंजाबी बाग जो है ना एरिया, इस पंजाबी बाग का नामकरण किसने किया। कहते हाँ पता चल जाएगा, कोई ना कोई नेता ने किया होगा, किसने किसी को उस पर किया होगा। मैंने कहा जो ये महात्मा गांधी रोड है ये पता करिए किसने लिखा। कहते हाँ आज से 60-70 साल पहले किसने, 50 साल पहले लिख दिया होगा महात्मा गांधी रोड, नाम पता चल जाएगा किसने किया। मैंने कहा थोड़ा और पीछे जाइए, ये जो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर पे वृंदावन है ना, जरा उसका पता चल जाइए कि उस वृंदावन नाम किसने रखा उसका। आप तो सरकारी अफसर हो, मथुरा किसने रखा, और जितना बड़ा हिल है जिसके चक्कर काटते लोग, उसका नामकरण किसने किया, रिबन किसने काटा था, उसे पत्थर लगा कि इस व्यक्ति ने, नेता ने, एमएलए ने, एमपी ने जो है इसका वो किया। कहते हाँ ये बात तो ठीक है, ये तो नहीं पता चला, ये तो इतिहास है। मैं कहा हाँ तो खोलो उस इतिहास को। मैंने कहा और पीछे जाइए, सरयू नदी के बारे में पता, किसने रखा उसका नाम सरयू, और किसने रखा उसके ठीक साथ में रहने वाली जगह का अयोध्या नाम। तो कहते हाँ ये बात तो ठीक है, सब चीज तो लगती है, इसका तो कोई नेता मिलेगा नहीं, तो इतिहास है। मैं कहता जितना लंबा इतिहास है, मैंने कहा सैटेलाइट से जो पिक्चर आया आपके पास समुद्र के अंदर का, श्रीलंका और भारत रामेश्वरम के बीच में जो पुल दिखाई दे रहे हैं वो किसने बनाया, कितने साल पुराना है। मैंने फिर वो मारा कहता हाँ मुझे घटनाएं तो हुई हैं ये सारी, और मैंने कहा सारी घटनाएं लिखी हुई हैं शास्त्र में। तो ये जो प्रेडिक्शंस हुई हैं, ये जो चीजें हुई हैं, इसका इस पर विश्वास करना पड़ेगा। हम लोग साइंटिस्ट लोगों की द्वारा की जाने वाली इनोवेशंस का इस्तेमाल तो करते हैं इन्हीं चीजों को सिद्ध करने के लिए, लेकिन हम लोग जो टॉप मोस्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने उन साइंटिस्ट को भी भेजा दिया है, वो जो दिमाग, कोई व्यक्ति ऐसा थोड़ी होता है जैसे कि मैं इतना दिमाग वाला, मेरा बेटा इतना दिमाग वाला बने, इतना दिमाग वाला बने, ऐसा कोई पहले थोड़ी डिसाइड होता है। तो ये जो दिमाग भी है जिसका इस्तेमाल हम करके कुछ ना कुछ इनोवेट करते हैं, उसका कारण भी कौन है, भगवान है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन हम बता रहे थे 432,000 जो कलयुग है इसको समाप्त नहीं होना बीच में, जैसे कि लोग बोलते हैं चांद पे चले गए, तो जिन लोगों को लगता है कि चांद पर चले गए और कल को वहां पर जीवन है हो जाएगा, तो हम लोगों को एक बोर्ड लगाना चाहिए बाहर, जिनको विश्वास है कि चांद पर चले गए केवल उनके लिए हम लोग प्लॉट बेच रहे हैं केवल 10 लाख में 100 गज का चांद पर, तो आप जमा कराएं और जैसे पहली फ्लाइट जाएगी लोगों के साथ पहला प्लॉट आपका। अगर तो आप पूरी तरह कन्विंस है कि हाँ चांद पर जीवन है, चांद तो आइए दीजिए, हमें पहली फ्लाइट में भेजेंगे आपको, है कि नहीं, कोई है तैयार, है कोई साइंटिस्ट यहां तैयार, नहीं पैसे लगते हैं भाई, अरे 5 लाख सस्ता दे देंगे, 5 लाख ले दिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी जाएंगे तो देंगे। तो नहीं है लोगों के पास विचार, नहीं है, डरते अंदर से, ऐसा नहीं है कुछ भी। तो 432,000 वर्षों तक चलेगा, और ऐसा 864,000 द्वापर युग का था, त्रेता युग का था 12,96,000 वर्ष, और सत्ययुग का था 17,28,000, 43,20,000 का एक युग है चतुर्युग जिसे बोलते हैं। तो ऐसा एक नहीं, 1,000 जब चतुर्युग बीत जाते हैं श्रीमद् भागवतम में चार प्रकार की प्रलय भी बताई है। तो जो ये समय बीत रहा है ना, जो हर क्षण बीत रहा है हमारा, इसको बोलते हैं नैतिक प्रलय। हर समय हो रही है, समय बीत रहा है काल के अनुसार, तो जो समय चला गया वो प्रलय हो गई, समय खत्म। बॉडी की सेल बदल जाते हैं, शरीर बदल जाता है, रूप बदल जाता है, समय बदल रहा है, तो हर समय प्रलय हो रही है, इसको बोलते हैं नैतिक। एक होते हैं नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय में क्या होता है, ये जो ब्रह्मा जी है ना, जिनका हम दिन बता रहे हैं कि 1000 चतुर्युग का इनका खाली दिन के 12 घंटे बीतते हैं, इतनी ही बड़ी इनकी रात भी होती है। तो दिन के समय तो सृष्टि होती है और सृष्टि में हम सब आ जाते हैं, लेकिन जब ब्रह्मा जी को सोना होता ना 12 घंटे काम करने के बाद, तो एक प्रलय आता है, इसको बोलते हैं नैमित्तिक प्रलय। उसमें क्या होता है कि सारे के सारे ब्रह्मांड में पानी भर जाता है ना, सारे के सारे, और ब्रह्मा जी सोने चले जाते हैं, शिव दक्षा विष्णु सब कुछ अपने अंदर डाल लेते हैं, खत्म, नैमित्तिक प्रलय। इसके अलावा होते प्राकृतिक प्रलय। प्रलय उसमें क्या होता है कि जितनी ये भगवान की सृष्टि है और ब्रह्मा जी के 100 वर्ष अगर पूरे हो गए, अभी तो खाली दिन के 12 घंटे बीते थे, प्रलय आ गए। आप बता रहे हैं कि प्राकृतिक प्रलय का मतलब है कि जिसमें ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो उसमें ब्रह्मा जी भी समाप्त हो जाते हैं और जितनी सृष्टि की गई है वो सारी की सारी महाविष्णु के नाभि कमल में वापस अंदर चली जाती है। यह है प्राकृतिक प्रलय। और एक प्रलय और है जिसे बोलते हैं आत्यंतिक प्रलय। ये कैसी प्रलय है? ये प्रलय का मतलब है कि जो जीवात्मा, जो मनुष्य, ये समझ जाता है कि ये सारा संसार 5 तत्वों से बना है और इसमें जो सटल एलिमेंट्स हैं, कौन से हैं वो? मन, बुद्धि और अहंकार, ये सटल है। इसके अलावा एक क्रिएशन और है, अव्यक्तम, जो अव्यक्त है, जो उसके और इसके संबंध को समझ जाता है, शरीर और आत्मा के भेद को समझ जाता है, जिसे मोक्ष बोलते हैं, यह आत्यंतिक प्रलय हो जाती है। समझ पा रहे? तो चार प्रकार के प्रलय बताए गए। तो जब प्रलय हो जाती है और फिर से भगवान से सृष्टि करते हैं और जो पूरी की पूरी क्रिएशन वापस नाभि कमल में चली गई महाविष्णु के, तो उस समय क्या होता है? उस समय भगवान महाविष्णु क्या करते, सब कुछ अंदर लेने के बाद, सब कुछ नाभि कमल में चला गया, सारी सृष्टि प्रलय कर दी, तो वो एक छोटे से बाल रूप कृष्ण का रूप ले लेते हैं। और हम देखते हैं कि कई बार चित्रों में, क्योंकि कहने के शास्त्र पढ़ते चित्र बनते हैं सारे, उस चित्र में हम देखेंगे क्या कि ये जो महाविष्णु है, ये पत्ता है, एक लीफ, उसके ऊपर लेटे हुए और अपना अंगूठा चूस रहे हैं, पैर का अंगूठा, छोटे से बालक। देखा किसी ने चित्र कहीं? एक और किसी? दो, सबने देखा, और इतने सारे आदमी, वेरी गुड। तो आपने देखा वो चित्र, तो ये वो महाविष्णु है जो एक बाल रूप कृष्ण के रूप में अवतार लेकर, मतलब अंगूठा मुंह में चूसते होते, सब कुछ इनके अंदर है। अब ये जो सृष्टि के अंदर जब फिर से उत्पन्न करते हैं, क्योंकि महाविष्णु का श्वास छोड़ना और श्वास लेना, क्या चीज? श्वास छोड़, हमने कितनी बार श्वास छोड़ा और कितनी बार लिया, हम गिन सकते हैं इस बात को? और कितना टाइम लगा कुछ पता चलता है? कोई वैल्यू नहीं इस टाइम की। लेकिन जब महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं, कारण दक्षाय विष्णु, तो उस श्वास छोड़ने में असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। ये सारे ब्रह्मांड निकल गए, और जब सांस अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो सारे ब्रह्मांड वापस अंदर चले गए, फिर छोड़ा, फिर सारे बाहर आ गए, फिर अंदर लिया सांस, फिर सारे अंदर चले गए। तो ये जो टाइम है ना, सांस छोड़ने का और सांस लेने का, ये ब्रह्मा जी के 100 वर्ष बीत जाते हैं सांस लेने छोड़ने में। कितना समय बीतता है? ब्रह्मा जी के 100 वर्ष, कि जैसे सांस छोड़ा, ब्रह्मांड प्रकट हुए, गर्भोदक्षाय विष्णु आए, शिरोदक्षाय विष्णु आए, नाभि कमल से गर्भोदक्षाय विष्णु के कमल निकला, उसमें ब्रह्मा जी निकले, ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी, सृष्टि में फिर हम सब लोग आए, उछलते फांते कूदते हुए आ गए और अपने अपने काम धंधों में लग गए, है कि नहीं? इतने देवता रच हो गए, सब कुछ हो गया, और उधर फिर एक दिन बीतता है तो हमने बता दिया नैतिक प्रलय, तुमने नैतिक प्रलय ब्रह्मा जी के 12 घंटे, उनको भी सोने जाना होता काम पर करने के बाद, तो सोने जाते हैं फिर प्रलय हो जाती है, फिर ब्रह्मा जी के भी जो 100 दिन बीतते हैं, मतलब सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग इस तरह से करके जब 1000 बार बीतते हैं तो खाली 12 घंटे बीत रहे और इतनी ही बड़ी उनकी रात, और इस प्रकार 100 वर्षों तक, एक साल नहीं कह रहे 100 वर्षों तक चलता है सब। तो सोचिए महाविष्णु की सांस, उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो तो ले ही रहे ऐसे प्राणायाम करते ना तो महाविष्णु भी यही कर रहे हैं। और समय देखिए, समय कि किस प्रकार, ऊपर के लोगों का समय देखिए और फिर नीचे आते आते सारा समय कैसे हो जाता है। एक मच्छर अपने आप में 100 वर्ष जीता है, उसी में वो दादा बनता है, पोते की शक्ल देखता है, सब कुछ देखता है, 2-3 दिन में मर जाता है, उसके लिए वही 100 वर्ष है। ऐसे कई बैक्टीरिया हैं जो कुछ क्षणों के लिए पैदा होते हैं, माता पिता बनते हैं, पोतों की शक्ल देखते हैं और मर जाते हैं, उनके लिए वो 100 वर्ष है। एक कुत्ता जीता है 15 साल 10 साल, उसके लिए वो 100 वर्ष के समान है, उसमें वो भी दादा बनता है, पोते को शक्ल देखता है और मर जाते हैं। हम लोग भी आते हैं 100 वर्षों के लिए, है ना, और क्या होता है, पोतों की शक्लें देखते हैं और चले जाते हैं। ऊपर के लोगों में देवता लोग हैं, उनकी उम्र हमसे भी ज्यादा है। उनकी उम्र कैसे है कि हमारे जब 6 महीने बीतते हैं यहाँ के तो उनका दिन का 1 घंटे दिन का 12 घंटे बीतते हैं, और जब हमारे 6 महीने यहाँ पर दूसरे बीतते हैं तो उनकी रात हो जाती है। इसलिए बोलते ना उत्तरायण में जा रहे हैं सूर्य, दक्षिणायन में जा रहे हैं, देवता लोग सो रहे हैं, अभी काम अच्छा मत करो, ये मत करो, देवता लोग जाग गए अच्छा करो। सुना आप लोगों ने, कितने लोगों ने सुना है? हाँ, तो ऊपर की टाइमिंग अलग है और उससे ऊपर और भी अलग है। अभी बीच में बताया स्पेस में दो भाई थे, सेम उम्र के जुड़वा भाई, एक को नीचे रखा, एक को स्पेस में ऊपर भेज दिया, और कुछ समय के बाद पता नहीं कितने वर्षों के बाद जब वापस आए तो दोनों की उम्र में फर्क पड़ गया था, दोनों के टाइम और सिस्टम में फर्क पड़ गया था, 5-7 साल वो छोटा ही था और ये बड़ा हो गया था, क्योंकि टाइम हर एक स्पेस में टाइम अलग है। तो इस प्रकार जब भगवान फिर से सृष्टि करते हैं, फिर से ब्रह्मा को प्रकट करते हैं, फिर से भगवान अज्ञानता, ब्रह्मा अज्ञानता में आते हैं, फिर भगवान से ज्ञान लेते हैं, फिर सृष्टि करते हैं, और ब्रह्मा जी का जो एक दिन है जो हम बता रहे थे, हमारे दिन में तो 12 घंटे होते हैं, ब्रह्मा जी के दिन में 14 घंटे होते हैं, 14 घंटे का मतलब 14 मनु होते हैं, 14 मनु का मतलब कि एक मनु, मनवंतर अवतार भी बोलते हैं, मनवंतर अवतार भी होते हैं, तो एक मनु में क्या होता है, हर बार इंद्र बदल जाते हैं, एक मनु मतलब 72 चतुर्युगों का होता है, मतलब एक मनु 72 चतुर्युग तक रहता है, सत्ययुग त्रेता द्वापर, तो इस प्रकार एक मनु है। तो परीक्षित महाराज ने बोला, अब आप समझ पा रहे हैं ब्रह्मा जी की एक दिन में 14 मनु और 14 मनुओं के अंदर 72 चतुर्युग, और चतुर्युगों में हरेक में भगवान का आना और जाना अवतार ले लेकर, कितनी लीलाएं की होंगी, कितने अवतार होंगे, किस किस में कहां कहां कौन कौन सी कहानियां होंगी, कितने राजाएं होंगे। तो इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी ने कथा करना शुरू करी और प्रश्न पूछने शुरू किए तो भगवान ने, सुखदेव गोस्वामी ने कहीं से भी कथा कोट कर दी, कभी कौन से मनवंतर की, कौन से मनवंतर की, क्योंकि कृष्ण कथा कर रही थी। तो परीक्षित महाराज कहते, महाराज और बताइए मनवंतरों के बारे में, और कई बार तो ऐसे ऐसे कल्प की कहानी छेड़ देते थे कि उस पिछले कल्प में चले जाते थे। इस वाले ब्रह्मा जी की बात नहीं कर रहे, इस वाले मनु के कल्प की बात नहीं कर रहे, इससे पिछले वाले की बात कर रहे हैं, और उससे पिछले वाले की बात कर रहे हैं, उसके 7वें मनवंतर की बात कर रहे, उसके 12वें मनवंतर की बात कर रहे हैं। तो कितने मनवंतर हैं एक में 14, और 14 के बाद ब्रह्मा जी के दिनों में कितने, एक साल में 5040। तो इसलिए बोला जाता है कि भगवान की लीलाएं अनलिमिटेड है, कितने कितने युगों में कब से आ रहे हैं भगवान। और ये जो ब्रह्मा जी 100 साल के जो आकर चले जाते हैं सांस के द्वारा, कितने मनु प्रकट हो गए, 7,20,000 मनु प्रकट हो गए, कुछ ऐसे कैलकुलेशन है उनका, ब्रह्मा जी की एक उम्र में 7,20,000 इतने मनवंतर। तो कहते हैं इस प्रकार के जो ब्रह्मा जी हैं इनका भी काउंटर नहीं है, इससे पहले कितने ब्रह्मा आके चले गए इसका भी कोई काउंट नहीं है, और वो भी 100 साल के थे, उसमें भी भगवान ने हर युग में अवतार लिया था, इतने इतने मनवंतर हुए उसमें भी। और इस वाले ब्रह्मा जी की तो बात, क्योंकि हम लोग सारी चीज अपने ब्रह्मा जी के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, हमारे पर्टिकुलर इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी। इसके अलावा तो चार मुंह वाले ब्रह्मा है हमारे, इसके अन्य जो ब्रह्मांड है उसमें आठ मुंह वाले भी है, सोलह मुंह वाले भी है और बड़े सारे हैं, लाख बताया गया। तो विश्वास नहीं हो पाएगा लोगों को। तो इस प्रकार राजोवाच में आज बोल रहे हैं कि बताइए थोड़ा सा कि आपने मुझे जो है मनुओं के सारे कालों का विस्तार से वर्णन कर चुके हैं और इन कालों में असीम शक्तिमान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अद्भुत कार्यकलापों का भी वर्णन कर चुके हैं। मैं भाग्यशाली हूं कि मैंने आपसे ये सारी बातें सुनी। परीक्षित महाराज कह रहे मैं भाग्यशाली हूं क्योंकि उन्होंने सुन लिया, हमने तो नहीं सुना। हम भाग्यशाली हैं क्या? अब अर्जुन ने गीता सुनी, कितनी टॉप मोस्ट नॉलेज दी गई अर्जुन को दी गई, अर्जुन भाग्यशाली है कि नहीं? और हम भाग्यशाली हैं क्या है? हम भाग्यशाली तब हैं जब उसी संवाद को हम भी सुनेंगे और हम भी पढ़ेंगे। तब परीक्षित महाराज की तरह हम भी भाग्यशाली बन सकते हैं जब उस संवाद को पढ़ेंगे और सुनेंगे तब, वरना हम सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली हैं। तो कह रहे हैं कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं क्योंकि मैंने ये सारी बातें सुनी आपसे और वो हमको राइटिंग में मिल गई व्यासदेव जी के द्वारा, उन्होंने लिखकर दे दी। भैया कल्लू के लोग आ रहे हैं, भुलक्कड़ लोग हैं, इनको याद बात कुछ रहता नहीं है। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाद रहता, इनकी बुद्धि बिल्कुल पत्थर पड़े हुए, इनकी बुद्धि पर कुछ समझ आता नहीं है। इन लोगों को जो सी चीज याद करते हैं रटाफिकेशन से पास होते हैं बेचारे, क्या करेंगे लोग। इससे पहले के युगों में श्रुतिधर ने एक बार सुना और एज इट इज बोल दिया। इस क्वालिटी को प्रकट किया था चैतन्य महाप्रभु ने। बाल्यावस्था में एक प्रकांड पंडित थे, है ना, निमाई पंडित के नाम से जाने जाते थे पूरे बंगाल में। और एक दिग्विजय पहुंचा केशव कश्मीरी जो सबको हरा रहा था, उसके मुख पे साक्षात सरस्वती का वास था और जहां पर भी बोलता था बड़े बड़े लोग ऐसे भाग जाते थे उनको देखकर कि ये आगे शास्त्रार्थ करने के लिए। तो एकदम पेपर साइन कर रहा था स्टाम्प पेपर के, लिख कर दे मैं हार गया, कहते जी लिख दिया। सबकी जगह जहां भी जाते थे बड़े बड़े शास्त्रार्थ में हरा देते थे। उन्होंने सुना कि बंगाल भी चलते हैं, बड़ा नाम सुना कि लोगों का, बंगाल आ गए तो बंगाल के सारे विद्वान भाग गए, कहते छोड़ो छोड़ो ये निमाई पंडित को आगे कर देंगे। क्यों? क्योंकि निमाई पंडित अगर जीत गया तो हम बोलेंगे देखो हमारे बच्चे से जीत गए, हमारी तो बात ही क्या थी। और अगर निमाई पंडित को उसने हरा दिया तो हम कहेंगे बच्चे को हराया, हमसे तो बात ही नहीं हुई आपकी। तो क्या किया निमाई पंडित को आगे, केशव कश्मीरी आए ढोल बाजे के साथ और उसने बातचीत शुरू करी, आओ मेरे से शास्त्रार्थ करो। कहते महाराज मैं तो बालक हूं, आप कहां वहां, इतने आपके बारे में बड़ा कुछ सुना है। कहते फिर भी, तो कहते चलो बताइए क्या करना चाहते हो। कहते हैं जी आप पूछो मेरे से भी कुछ। कहते हैं आप ये गंगा के विषय में कुछ बताइए, गंगा बह रही है यहाँ पर। तो केशव कश्मीरी ने हवा की रफ्तार से, मतलब हम लोगों को तो कुछ बनाना पड़े तो सोचते हैं 50 बार क्या लिखो, अगला शब्द क्या हो। तो केशव कश्मीरी ने हवा की रफ्तार से 100 श्लोकों की रचना कर दी गंगा के गुणगान में, फर्राटेदार संस्कृत बोलकर। अब क्या था, सबने तालियां बजाना शुरू कर दी, कमाल हो गया। और निमाई पंडित जी का कमाल हो गया, मतलब मजा आ गया। ऐसा व्यक्ति साक्षात लक्ष्मी सरस्वती बैठी है आपकी जीवा पर। तो कहते हैं श्रीमान जी काम करते हैं आपने, मतलब बहुत अच्छा व्याकरण क्या सुंदर थे, क्या छंदों का प्रयोग किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसमें कुछ 5 अच्छाइयां भी बताइए और 5 कमियां भी बताइए। उसको गुस्सा चढ़ गया कश्यप, कहते कमियां, कहते भाई अच्छाइयां तो बहुत हैं, कहते हैं बहुत सारी हैं बट 5 मुख्य बताइए और मैं चाहता हूं कि 5 आप कमियां भी बताएं। कहते कमी कैसे हो सकती है। तब उनका बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने महाप्रभु ने कहा निमाई पंडित ने कहा मैं बताता हूं। तो पहले उनका गुणगान किया, वाह क्या छंद था, क्या व्याकरण इस्तेमाल करी, कहां ये लगाया कहां वो लगाया, बहुत सुंदर। कहते जी अच्छा, कहते अब कहते मैं कुछ कमियां बताना चाहूंगा। और कमियां कैसे बताई, कहते कि यहां पर आपने इस छंद में ये कर दिया और इस जगह ये कर दिया और एक जगह श्लोक में भवानी भरतू शब्द का इस्तेमाल कर दिया जिससे पता चलता है कि शिव पार्वती के एक नहीं 2 पति हैं। तो खराब हो गया वो सिस्टम। तो ओहो जैसे ये सुने, कहते कौन सा श्लोक, कहते 64 नंबर श्लोक था, उसमें गलती की आपने। अरे 100 श्लोक बोले हवा की रफ्तार से और उसके 64 नंबर श्लोक की गलती मालूम पड़ गई और उसमें भी लाइन बता रहा है कि भवानी भरतू शब्द। वो तुरंत जो है पानी पानी हो गए शर्म से और निमाई के जो है दोस्त करने लगे हाँ देखो देखो। तो मतलब आप देखिए श्रुतिधर, मतलब सुना और सब स्मरण कर लिया। तो पहले लोग ऐसे हुआ करते थे पिछले युगों में, सुनते थे और याद कर लेते थे। श्रुतिधर होते थे, सुनकर याद करते थे। लेकिन कलयुग के लोग ऐसे श्रुतिधर नहीं है। कलयुग के लोगों को कुछ भी सुना लो, कितनी बार समझा लो, रिमाइंडर लगा लो, अलार्म लगा लो, लोगों को समझा दो मुझे याद दिलाना, तो भी चीज याद नहीं रहती। मंद सुमंद मत हो मंद भाग। इसलिए व्यास देव जी ने क्या किया, रचित कर दे, लिख कर दे दिए, लो भैया लिख पढ़ लो। और फिर आगे कहा कि द्रविड़ देश के साधु सदृश राजा सत्यव्रत को भगवान भगवत कृपा से गत कल्प के अंत में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। वह अगले मनमंत्र में विवस्वान का पुत्र व्यवस्थित मनु बना। विवस्वान का पुत्र व्यवस्थित मनु जो अभी चल रहा है जैसे सातवा, मुझे इसका ज्ञान आपसे प्राप्त हुआ है। मैंने यह भी जाना है कि इश्वाकु आदि राजा उनके पुत्र थे जैसा कि आप पहले बता चुके हैं। यही बात भगवान श्री कृष्ण भी बोल रहे हैं। विवस्वान के राजा कौन हुए बताए ना, विवस्वान है राजा और उसके बाद इश्वाकु, फिर मनु और इश्वाकु, इस तरह से करके वही परंपरा भगवान बता रहे हैं कि मैंने सूर्य के राजा को ज्ञान दिया था शुरू में ये सब। तो यहां पर बता रहे हैं, फिर कह रहे हैं, हे परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, हे महान ब्राह्मण, कृपा करके हमको उन सारे राजाओं के वंशों तथा गुणों का अलग अलग वर्णन कीजिए, क्योंकि हम आपसे ऐसे विषयों को सुनने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। उत्सुक है सुनने के लिए। अब ये देखिए उत्सुकता कैसे जाग रही है, इतने सारे कल्पों में इतनी लीलाएं हुई हैं, उन राजाओं के विषय में सुनना चाह रहे हैं। आज हम लोग क्योंकि वो कल्चर खत्म हो गया, संस्कार खत्म हो गए, तो हम लोगों को भी दिखाया जाता है, लेकिन वो फिल्मों के माध्यम से काल्पनिक कथाएं बनाई जाती हैं, काल्पनिक असुर बनाए जाते हैं, काल्पनिक टेक्नोलॉजी का यूज कर सारी चीज कल्पनाओं कपोल कल्पनाओं के आधार पर दिखाई जाती है। हीरो दिखाया जाता है जो उनको मारता दिखाई देता है, और हम लोग हर चीज वाव फीलिंग के साथ देखते हैं, साउंड ऐसे इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक ऐसे इस्तेमाल करते हैं, कमरे के अंदर पूरी फिल्म बना देते हैं और लगता है जंगल में बनी है। उन टेक्नोलॉजी उन फोटोग्राफ्स को देखते हैं तो व्यक्ति ऐसे ऐसे बात कर रहा है, डरता हुआ दिखा रहा है, ये एक्टिंग के पैसे मिलते हैं उनको, ऐसा डरता है जैसे सामने कोई है, कोई नहीं है सामने, उसके सामने एक ना ऐसे बल्ब लगा रखा होता है कि इसको दिक्कत है, को डरना है। और बाद में टेक्नोलॉजी का 3D और 4D का इस्तेमाल कर दिखाते हैं, वहां पर तो डायनासोर था, वो उसको ऐसे देख रहा है और वो डर रहा है, मेरे सामने डायनासोर है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। और ये चीज लोगों को पता है कि सब बेवकूफ बना रहे हैं हमें, हमारे तीन घंटे दो दो घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, फिर भी लोग देख रहे हैं काल्पनिक। और अगर इन कथाओं को, क्योंकि उन्हीं को देखते रहते हैं, तीन तीन घंटे लोग इस्तेमाल करते हैं अपना जीवन के, अगर वही कथाएं वही कहानियां यही श्रीमद भागवतम की ली जाए और उनका उनके ऊपर पिक्चराइजेशन हो, शुरू से ऐसा होता तो कितना स्मरण होता भगवान का, कितनी सुंदर उनकी लीलाओं का स्मरण हो पाता। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि मैं इनको सुनने के लिए उत्सुक हूं, मुझे और बताएं। और फिर उन्होंने कहा, कृपा करके हमें व्यवस्थित मनु के वंश में उत्पन्न उन समस्त विख्यात राजाओं के पराक्रम के विषय में बतलावें जो पहले हो चुके हैं, जो भविष्य में होंगे और जो इस समय विद्यमान हैं। और आज के श्लोक में बोला, सूत गोस्वामी जी ने कहा कि जब वैदिक ज्ञान के पंडितों की सभा में सर्वश्रेष्ठ धर्म के सूत गोस्वामी ने महाराज परीक्षित ने इस प्रकार कहा, प्रार्थना की, तो वे इस प्रकार बोले। अब क्या बोले, शुद्ध स्वामी ने कहा कि हे शत्रु के दमन करने वाले राजा, अब तुम मुझसे मनु के वंश के विषय में विस्तार से सुनो, मैं यथासंभव तुम्हें बताऊंगा, यद्यपि 100 वर्षों में भी उनके विषय में पूरी तरह से नहीं बताया जा सकता, 100 सालों में भी नहीं बताया जा सकता, फिर भी मैं तो प्रयास करता हूं। और फिर आज कहा कि जीवन की उच्च तथा निम्न अवस्थाओं में पाए जाने वाले जीवों के परमात्मा दिव्य परम पुरुष कल्प के अंत में विद्यमान थे, कल्प के आरंभ में भी विद्यमान थे, भगवान परमात्मा की बात कर रहे नारायण की, जब ना तो यह ब्रह्मांड था और ना ही अन्य कुछ था, तब केवल वही विद्यमान थे। तो ये शास्त्र कह रहे हैं और सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि जीवों के उद्गम से पहले और इस ब्रह्मांड से पहले भी कौन थे, भगवान एग्जिस्ट करते थे, मध्य में भी एग्जिस्ट करते हैं और ये जब नहीं रहेंगे तो भी एग्जिस्ट करेंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता में 8वें अध्याय के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में जहां भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, उस श्लोक में प्रभुपाद जी ने कई वेदों से, उपनिषदों से और कई पुराणों से श्लोक कोट किए जिसमें यह समझाया है कि कैसे ब्रह्मा नहीं थे जब, शिव नहीं थे जब, तो भी नारायण थे, ब्रह्मा ने उत्पन्न किया ना सबको, बट कह रहे उनसे पहले भी नारायण थे, इस सृष्टि से पहले भी नारायण थे, तो वही नारायण उपस्थित थे, फिर से सृष्टि करते हैं, फिर से हम लोग बाहर आते हैं और फिर से एक शरीर मिल जाता है हम लोगों को। लेकिन जब इस शरीर का, इन कानों का, इन जिह्वा का सदुपयोग नहीं किया जाता और उनको ऐसे कर्मों में लगा दिया जाता है जिन कर्मों का भगवान से कोई संबंध नहीं है, भक्ति से कोई संबंध नहीं है, तो वो कर्मों का फल हमें भोगने के लिए वापस संसार में आना पड़ता है। क्योंकि हम बचपन से भगवान के विषय में नहीं सुना, बचपन से हमारा ऑब्जेक्ट लाइफ का भगवान नहीं थे, इसलिए जब ये सुनते हैं किसी कथा में कि नहीं जीवन का लक्ष्य तो ये है, तो बड़ा ही दुख लगता है, बड़ा ही इनसिक्योरिटी फील होती है। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी मम्मी ने तो कभी नहीं बताया, हमारे पापा ने तो कभी नहीं बताया, उन्होंने एक ही चीज बताई बेटा कर्मी पूजा है, गीता से बस यही उठा के बताया, उसके बाद की लाइन भी नहीं बताई, क्योंकि उसके बाद की लाइन बताते तो मैं खुश ना हो जाता, सुखी नहीं हो जाता। क्या बताया, एक ही सेंटेंस बताया, कर्म ही पूजा है, ताकि व्यक्ति कर्म करता रहे, कर्म करता करता पैसे कमाता रहे, खुद भी इंजॉय करे और हमें भी इंजॉय करे करवाए। क्यों? क्योंकि कर्म ही यही बताया बस। कहीं निठल्ला ना बैठ जाए, कहीं यहां ना चला जाए, कहीं वहां ना चला जाए, है ना। कर्म करेगा तो शादी होगी, है ना, कर्म करेगा पैसा आएगा, कर्म करेगा तो हमारी रक्षा करेगा, तो बस कर्म ही पूजा, पूरी गीता का सार ये है। क्या? हाँ, इसकी अगली लाइन तक नहीं बताई, क्या थी अगली लाइन? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें कर्म करने का तो अधिकार है, लेकिन फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अगर इतना भी दूसरी लाइन भी सीख लेते बचपन से, तो व्यक्ति के दुख खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म से आसक्त हो जाते हैं, मुझे ये मिलने वाला है, आज मुझे ये मिलने वाला है, मैंने ये कर्म किया तो उसका ये फल मिलने वाला है, पिताजी मैंने दुकान खोली है रोज का 50,000 कमाऊंगा, कर्म किया और कर्म के फल से आसक्त। लेकिन अगली लाइन नहीं बताई, बेटा कर्म कर तो सकता है तू, अधिकार तो है कर्म करने का, लेकिन उसके फल से आसक्त कभी मत होना कि वैसा ही होगा जैसे तू चाह रहा है, नहीं, फल मैं दूंगा, मां फलेशु, मैं फल देता हूं, इसलिए आप अपने आप को कर्ता मत मानो। तो कितना सुख हो जाता है व्यक्ति के लिए, भैया मुझे कर्म करना है, अपना भी वैराग्य आता है ना कि फालतू कर्म करूं ना, उतना करूं जितने में खाना पीना सोना आराम से हो जाए, है ना, इतनी टेंशन नहीं ना लूं, जो फल मिलना वो जो मेरे कर्मों में लिखा वो मिल ही जाएगा, 8 घंटे में भी मिल जाएगा वो, तो है ना। तो व्यक्ति इस तरह से कर, तो फिर जब हम लोग इन इंद्रियों का, इन सेंसेस का, इस इंटेलिजेंस और माइंड का जब सदउपयोग नहीं करते और फिर यहां पर उद्योग करते हैं, उद्योग मतलब भीषण उद्योग, मैं ये बनकर दिखाऊंगा, मैं वो बनकर दिखाऊंगा, मैं गोल्ड जीतूंगा और ये करूंगा और पता नहीं क्या क्या, तो जब हम लोग इस प्रकार के उद्देश्य बना लेते हैं और उसके कर्म करते हैं, तो उसमें अच्छे भी होते हैं और बुरे ज्यादा होते हैं, अच्छे कम होते हैं, और उन सबका रिएक्शन लगता है, और सब रिएक्शन के रूप में फिर से जन्म मिलता है और फिर संसार में भगना पड़ता है। लेकिन इन्हीं इंद्रियों का अगर इस्तेमाल किया जाता है, बचपन से ऐसा वातावरण मिलता जहां पर यह बताया जाता कि ये जो मन मिला है, ये जो बुद्धि मिली है, जो ये शरीर मिला है, ये हम लोगों को 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ योनि मिल गई है, इसी योनि से हम बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, कुत्ता बिल्ली गधा इन सब योनियों में आने का छुटकारा मिल सकता है, बस क्या करना पड़ेगा, इसी लाइफ में इन सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा? श्रवण करना पड़ेगा, कर्णों से कानों से भगवान की कथा सुननी पड़ेगी, जिह्वा से भगवान का नाम लेना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस कराइए बचपन से, अगर ये वातावरण होगा। आज माँ बोलती है बेटा पोयम सुना, बचपन पैदा होती है बेटा पोयम सुनाता है, चल फिल्म का गाना सुना, वो गाना सुनाता है, चल तू ज्यादा नहीं मालूम बट कोई फिल्मी सॉन्ग सुना, माँ खुश होती है, ताली बजाती है, देखो अपने रिश्तेदार, देखो किसने ये सुनाया, कल्चर ही बदल गया। और अगर आध्यात्मिक कल्चर होता तो बच्चा सुनाता श्लोक, सर्व धर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, माँ ताली बजाती, देखो कितना सुंदर श्लोक सुनाया। आज सुनाता माँ देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, माँ पापा ताली मारते हुए थे, कितना अच्छा सुनाया, पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, तो ये सुन के खुश होता है व्यक्ति, पूरा का पूरा कल्चर अलग है ना। तो अगर वो वातावरण होता है या नहीं दिया तो अब देना शुरू करें, या ऐसे वातावरण में रहना शुरू करें जहां कान को और जीवा को भगवान की सेवा में लगा सकें। इसलिए बोला गया बिले बल शास्त्र में, भगवत गीता भागवतम के दूसरे शास्त्र में बोला गया कि जिस व्यक्ति का के कानों में भगवान की कथा नहीं प्रवेश करती, उन कानों के छेदों को बोला गया है वो सांप के रहने की जगह है। और कहते हैं जिस व्यक्ति की जिह्वा में भगवान का नाम नहीं आया, जिसके लिए कि शरीर मिला था, जिह्वा मिली थी, तो कहते हैं वो मेंढक की टर्टर करने वाली जिह्वा है, बस समझ लीजिए मेंढक की, समझ कहां इस्तेमाल कर लिया, फिल्मी सॉन्ग सुनने में, ओल्ड इज गोल्ड, फौजी भाइयों के लिए छाया गीत सुनूंगा मैं, सिबा का वर्णमाला सुनूंगा मैं, अरे भैया ये क्या है, कान इसलिए थोड़ी मिले थे। तो हमने क्या करा, इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का मिसयूज कर दिया, जानिया शून्या विष खाई नू, जान बुझ कर विष खा लिया। यहां पर शुद्ध को स्वामी जी के सामने शरणागति दी और राजो अर्थात परीक्षित महाराज के लिए मैं और सुनना चाहता हूं, इनमें मुझे रुचि उत्पन्न हो रही है। आप देख रहे रुचि का, देख रहे किसको कहां पर रुचि है। उनको रुचि है भगवान की कथा सुनने में, रोज नए नित्य सुंदर सुंदर लीलाओं का श्रवण करने में आनंद आ रहा है, और हमें रोज नई फिल्म, पहला शो फ्राइडे, फर्स्ट शो फर्स्ट सीन मैंने देखना है। ब्लैक में लूंगा, लाइन में खड़ा हूंगा, बट पहला मैंने देखना है, आज तक दूसरा नहीं देखा मैंने। वही रुचि वहां लगाई हुई है और ये रुचि यहां लगानी थी। ये रुचि अगर रहेगी तो यहां पर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम बार बार आना पड़ेगा, फिर से किसी न किसी माता के गर्भ में प्रवेश करना पड़ेगा, और फिर से यहां पर सफरिंग्स हैं, फिर से यहां पर कलेश हैं, कला है। बस एक ही सुख है, क्या, कि मैं अकेला परेशान नहीं हूं। बस इस बात का सुख है, इससे हमारे दुख कम हो जाते हैं। लोग कहते हैं बांटना चाहिए, बटा हुआ है, सब दिख रहा है, सारे परेशान है, सारे दुखी हैं, किसी से कोने में ले जाके बात करो, इतना दुखी हो गया यार, तू तो बड़ा परेशान है यार, लगता तो नहीं, कहते क्या करूं आदत पड़ गई। हर व्यक्ति दुखी, हर व्यक्ति परेशान, हर एक घर में इतनी समस्याएं, उसको लगता है मेरा ही घर सबसे खतर, भगवान मैं ही रह गया था इतने दुख देने के लिए। और तब संतोष मिलता है उसको कि जब पता चलता सारे परेशान है, सारे दुखी है, ओके, सारे निकम्मे हैं, सारे मीट खा रहे हैं, सारे नर्क जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा, क्या है, उसको वहां पड़ रही होगी मार, मुझे यहां पड़ रही होगी, वो भी चिल्ला रहा होगा, मैं भी चिल्ला रहा हूंगा। तो आदत पड़ गई पिटाई खाने की, आदत पड़ गई यहां पर सफरिंग्स की, इसलिए मन करता नहीं भक्ति करने का। हां ये सब छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा, अरे गंदी चीज छोड़ रहे हो, तुम्हें अगर मैं बोलूं नाले में जाके मल खाओ, खाओगे, नहीं नहीं बदबू आती, अरे परफ्यूम छिड़क दूंगा तब तो खाओगे, हाँ तब खा लो। मांस क्या चीज है, आप अपना मांस निकाल कर देखिए, देखने का मन नहीं करता, ऐसे पशु का मांस खाते हैं लोग, सड़ा गला, पता नहीं कब मरा था, कैसे मरा था, क्या बीमारी, खा लिया, चलो लो, है ना। फ्रेश जूस की दुकानें हैं, लेकिन उसको बासी जूस ही पीना है, जो जमीन के अंदर गाड़ कर कई साल में बाद निकाला जाता है, उबाला जाता है ना, जिसको पी के हिलता है, डुलता है, गिरता है, वो पीना है उसको, जिसको पी के कलेजा जलता है ना, वो पीना है उसको, है ना। तो इतनी गंदी चीजें खा रहे हो, इतनी गंदी चीजें कर रहे हो, इतना तो इससे अच्छा है कि अच्छा वाला काम कर लो ना, जिसे शांति है, सुख है, आनंद है। फिर बोलते हैं सर सुख नहीं है जीवन में, और सुख कैसे आएगा, सुख कैसे आएगा, इतने उल्टे सीधे काम करके सुख आता किसी के जीवन में। तो सिंपल लिविंग क्या करना है, इन कानों का इस्तेमाल करना भगवान की कथा को सुनने में, इस जिह्वा का प्रयोग करना भगवान के पवित्र नामों को जप करने में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। खबरदार अगर ये बोला कि नहीं अभी उम्र नहीं है, ऐसे नहीं बोलो उम्र नहीं है, अभी इतनी उम्र में थोड़ी करते हैं सब, कब करते हैं, हाँ हाँ नहीं, इसको जितना जल्दी करोगे अभी आदत तो उल्टी सीधी आते बहुत पड़ेंगी है, अभी से हरिनाम की आदत डाल लो और भगवत गीता और भागवतम को पढ़ने में। तो इस प्रकार अगर करेंगे ना तो आदत कहां की पड़ेगी, संस्कार कहां के छपेंगे, भक्ति के संस्कार छपेंगे। इसलिए जिनकी प्रवृत्ति सतोगुण की होती है, जो ये सब पढ़ते हैं, वो बेचारे देखते हैं समाज की तरफ और बड़े ही करुणाशील हो जाते हैं, बहुत ही हृदय उनका द्रवित हो जाते हैं कि इनका उद्धार कैसे हो, है ना। जैसे बच्चे को देखते हैं जब हम लोग मिट्टी पे लोट रहे पोट रहे हैं या कुछ गंदी चीज खा रहा है, तो हम तरस खाते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है, हम उसको बचाना चाहते हैं उस जगह से, है ना। उसी तरह भक्त लोग भी चाहते हैं कि सबको बचाया जाए और कहां पर लाया जाए, उस आनंद पूर्वक आचरण में लाया जाए जहां पर श्रवण कीर्तन ही एक आनंद का स्रोत बन जाए। और आनंदम बुद्धि वर्धनम, मतलब दिन ब दिन वृद्धि होती है आनंद के सागर में, कमी नहीं होती, वृद्धि होती है हरि नाम लेने में और कथा सुनने में। तो इस प्रकार उनको भी टेस्ट डेवलप हो गया कथा सुनने में। और प्रभुपाद जी आखिरी में बोलते हैं, मनु के वंश के वर्णन का कहीं से भी प्रारंभ किया जाए, इस दृष्टि से सुखदेव गोस्वामी ये कहते हैं, वे प्राप्त करते हैं कि जब समस्त जगत जलमग्न हो जाता है तब केवल भगवान विद्यमान रहते हैं, उनके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं रहता। अब सुखदेव गोस्वामी यह बताएंगे कि भगवान एक एक करके अन्य वस्तुओं को किस प्रकार उत्पन्न करते हैं। तो वो हमने आपको पहले बता दी कि किस प्रकार प्रलय होती है, किस प्रकार भगवान से कुछ अपने अंदर संजो लेते हैं और फिर कैसे प्रकट करते हैं, और फिर अब कैसे कैसे आगे सृष्टि होगी फिर से बताना शुरू करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की समय